इमे जनपदा स्वृद्धा सुप कौषधि विरुधः वनाद्रि नदी दनवंत ये धनते तो विक्षित ही। चरण स्पर्श की महिमा बता रहे, पृथ्वी को चरण स्पर्श मिलता है इसलिए धन्य होती है। और हमारे राज्य के इमे जनपदा, ये जनपद, जनपद का अर्थ होता है जनता का पद, जैसे कोई टाउन है, सब डिवीजन है, जिला है या गांव है, शहर है, इसको जनपद कहते हैं, जहां जनता रहती है। इमे जनपदा स्वृद्धा, हे प्रभु आप देखिए हमारे राज्य में जितने जनपद हैं, जितने गांव और शहर हैं, सब सुरिद्ध अत्यंत समृद्ध हैं, अत्यंत समृद्ध हैं। और सुपोक औषधि विरुद्ध, आप क्षेत्रों पर दृष्टि डालकर देख ही रहे हैं, भगवान से कहती हैं सुपोक औषधि विरुद्ध, हमारे राज्य में आपकी दृष्टि से, आप करुणामृत की वर्षा से, आप जब कृपा की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे राज्य में अन्न की प्रचुरता है, खेतों में अन्न भरा पड़ा है। औषधि, औषधि कहते हैं जो एक बार पक करके फसल सूख जाता है पौधा, तो उसको औषधि कहते हैं। और विरुद्ध अन्न, लताएं, सब्जियां और पेड़ पौधे, फल फूल से भरा हुआ हमारा राज्य। हमारे राज्य में फल फूल, दूध, दही, सुंदर जल, सरोवर, नदियां, वनाद्रि नद दनवंत ही ए धनते, ये सब बढ़ रहे हैं, इनकी वृद्धि हो रही है। पर्वतों से खनिज प्राप्त हो रहे हैं, सोना चांदी हीरा प्रचुर मात्रा में, और समुद्र से मोती निकल रहे हैं, तट पर मोती समुद्र डाल देता था अपने अपने लहरों से। आज के समुद्र के किनारे जाइए तो समुद्र लहरों से केवल मरी हुई मछली और ये सब निकालता, और मनुष्य समुद्र से पा क्या रहे हैं, वो भी फिशिंग कर रहे, मछली निकाल करके हजारों टन रोज बेचते बस। लेकिन उस समय समुद्र से रत्न अपने आप आते थे, पहाड़ों से, समुद्र से, नदियों में कलकल कर पानी बहुत निर्मल अमृत के समान मीठा और स्वच्छ बहता रहता था, बहता रहता था भगवान के दृष्टि पड़ने से। तो विक्षिता या तो विक्षिता, भगवान के वीक्षण से, जब हस्तिनापुर के राज्य में भगवान भ्रमण करते थे तो कुंती महारानी कहती हैं आपके दृष्टि पड़ने से फसलें भरी हुई हैं, अन्न भरा पड़ा है, पेड़ पौधे फल से भरे पड़े हैं, समुद्रों का विकास हो रहा है, जलाशयों का विकास हो रहा है, उदनोता से शब्द है बड़े बड़े सरोवर जैसे ब्रह्म सरोवर इत्यादि निर्मल हैं, जल से परिपूर्ण हैं, और समुद्र मोती उगल रहे हैं। आपके दृष्टिपात से भगवान को अपने जीवन में रखा जाए तो धरती भी सुखी होती है, पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं, फल बड़े बड़े होते हैं, और अन्न से संपूर्ण देश भर जाता है, दूध से, दही से। ये है भगवान की अद्भुत महिमा। तो इच्छित है कुंती महारानी देख करके बोल रही हैं कि आपके दृष्टिपात से पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, पर्वत बढ़ रहे हैं, नदियां बढ़ रही हैं। बढ़ने का मतलब ये सब अपनी अपनी विशेषताओं से युक्त है, नदियों में पानी अमृत जैसा साफ साफ बह रहा है। आज क्या दशा हो गई नदियों की, मनुष्य भगवान से विमुख हो गया। विमुख होकर वो सोचता है कि हम फैक्ट्री से, हम कसाई खाना से, इन घरों से, पशुओं की हत्या करके सुखी हो जाए। वो सोचता है अगर अनाज नहीं मिलेगा तो पशु खाएंगे, खा ही रहा है, लेकिन क्या कोई मांस से जीवित रह सकता है। किसी को अन्न ना दिया जाए, कुछ फल ना दिया जाए, कहा जाए मांस खा करके जियो, जी जाएगा? पाप का भार अपने सिर पर ले लेते हैं। बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं कि फैक्ट्रियों से ही नदियां ज्यादा गंदा हुई हैं, और इससे हुआ क्या है कि कुछ मजदूरों के शोषण द्वारा उनसे अत्यधिक काम लेकर के कुछ लोग इसको सीमित कर दिया अपने आमदनी का स्रोत, कुछ लोग तो पैसा कमा लेते हैं लेकिन बाकी जनता को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है, और कई लोग कई प्रकार की बात करके फल के बगीचे को इसको पेटेंट करो, पेटेंट करो, ये करो, ये करो, ये फल सब लोग नहीं उगा सकते, सब लोग नहीं खा सकते, तो फल को इतना महंगा कर दिए। अभी हम लोगों के होश में जीटी रोड पर हमने देखा था कि आम के पेड़ दोनों तरफ लगते रहते थे, लदे थे, और वर्षा का आरंभ होते ही पक जाते थे। हम लोग एक बार अपने गांव से बनारस जा रहे थे, 3-4 आदमी पैदल, जहां तहां से आम खा खा करके बिल्कुल तृप्त हो रहे थे, पैदल जा रहे थे। कोई उस समय ये पाबंदी नहीं थी कि नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, लेकिन आज इस जनता को कहीं सुलभ नहीं है कोई फल, खाना है तो खूब महंगा बाजार से खरीदो, कोई न कोई कंपनी ले ली तो कोई न कोई मालिक बन गया, वो सबको फल खाने नहीं देगा। भगवान ने धनुकासुर का वध करके ताल फल को सबके लिए सुलभ किया था, सब लोग खाए, वो खाने नहीं देता था। कई कई बार ऐसे धनी लोग होते हैं जो फल को या अन्न को बाजार में आने ही नहीं देते, जिससे उसका दाम बहुत बढ़ जाए, और कोल्ड स्टोर में रहकर जैसे तैसे वो संचित करते हैं, दाम जब बढ़ता है तब खोल खोल करके देते। तो सामान्य जनता को तो फल मिल ही नहीं रहा, अन्न भी नहीं मिल रहा है। अन्न मतलब जो इधर का सबसे अच्छा चावल है उसको एक्सपोर्ट कर देते, एक्सपोर्ट के बदले उनको क्या मिलता है, कागज मिलता है, जिसको डॉलर कहते हैं, कागज मिलता है, और कोई लाभ नहीं है। कुछ काल के लिए उसका वैल्यू है कि ठीक है डॉलर का वैल्यू है, लेकिन इसके बाद तो पता चलेगा, जब कागज भेज करके इधर से सैकड़ों टन चावल और क्या क्या जीवन की आवश्यकताएं भेजते रहते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और कहते हैं हाँ हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता को कम पड़ रहा है। जब यहाँ की उपयोगी चीजों को जब तुम एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको तो डॉलर मिलेगा, और जनता को वस्तु नहीं मिलेगी, मिलेगी तो बहुत महंगी मिलेगी। ये है मनुष्य की चेतना, देखिए, और सोचते हैं ये फैक्ट्री खोल दे, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सुखी होते जाएंगे, लेकिन इन फैक्ट्रियों के द्वारा मनुष्य समाज ने इस पृथ्वी को नरक बना दिया, बहुत दुख में फंस रही है जनता, और आगे बहुत दुखी होगी। लाख कहें कि हम सुखी करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं, भगवान जो सहज व्यवस्था किए हैं, प्रकृति का दान दिए हैं, ये पेड़ पौधा फसल प्रचुर अन्न पानी नदियों में, इसी को बढ़ाना चाहिए, इसी को विस्तृत करना चाहिए, तो तब लोग इसको महत्व को समझेंगे जब कृष्ण के भक्त होंगे, अन्यथा नहीं समझेंगे। पहले के सब भी आदमी वन में चले जाते थे, फल फूल पर रहते थे, करते थे, अन्न पर रहते थे, अब जहां देखिए वहां निर्लज्ज भाव से मांस का विवरण देना और शराब का विवरण देना, शराब ठेका, देसी शराब ठेका, अंग्रेजी शराब राक्षस कहीं के, ये क्या लिख रहे, इस प्रकार की व्यवस्था है संसार, लज्जा आनी चाहिए। शराब भांग और मीट, यहाँ मीट मिलता है, यहाँ फ्रेश मीट मिलता है, मीट इस देश में। अभी मैं कुरुक्षेत्र में देखा एक जगह पर अंडा बिक रहा था, तो हमने सोचा क्या अभी भी ये रिलीजियस सिटी घोषित नहीं हुआ है कि अंडा को ही फलाहार मानते हैं, क्या बात है। ये देश की व्यवस्था है, जिसके लिए प्रथम बार का धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, और नियम है कि भाई किसी क्षेत्र को किसी शहर को रिलीजियस घोषित करना चाहिए, वहां कोई शराब ना पिए, कोई मांस ना खाए, कोई ये ना करे। ये आश्चर्य है कुरुक्षेत्र को रिलीजियस सिटी घोषित नहीं की। अथवा मैं ये सोचने लगा कि हो सकता है कि अंडा को मांस नहीं मानते हैं, ये भी एक चेतना ही। प्रकृति के जो वरदान है उन पर डिपेंड करना चाहिए। प्रकृति कब सुखी होती है? जब भगवान का संपर्क मिलता है। धरती के लिए या हमारे लिए या देश की जनता के लिए या सरकार के लिए, सबके लिए भगवान कृष्ण का संग आवश्यक है। हम व्यक्तिगत कैसे संग करेंगे? भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का प्रसाद खाएंगे, भगवान के बारे में कुछ बोलेंगे, गीत गाएंगे, तो ये है भगवान का डायरेक्ट संग हमारे द्वारा। और समाज में भगवान के सामूहिक भक्ति की व्यवस्था करना, जैसे रथ यात्रा है, जैसे भागवत सप्ताह है, कथा की व्यवस्था करना, रथ यात्रा निकालना, गलियों में कीर्तन निकालना, प्रभात फेरी, और जनता को भगवान का प्रसाद देना। प्रसाद है, थोड़ा भी दिया जाए तो उस प्रसाद को खाने से पाप कट जाता है, जीव शुद्ध होता है। तो इस तरह से ये जो आयोजन निष्कान के द्वारा होते हैं वास्तव में बड़े महत्वपूर्ण हैं। भगवान को व्यक्ति के हृदय में, परिवार में, या जिला में, राज्य में, देश में, या पूरे संसार में भरने का प्रयास करना चाहिए वैष्णव। यही हम सब का धर्म है वास्तव में। एक व्यक्ति आज हमसे प्रश्न किए, एक भक्त है, कि महाराज ये सब, ये सारे पंथ कैसे खत्म होंगे? विष्णु भक्ति के अलावा हमने कहा खत्म नहीं होंगे, आप अपना कीजिए, ये खत्म नहीं होंगे, कम बेसी होते रहते हैं, ये खत्म नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण हैं, तो किसी पर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहेगा, किसी पर तमोगुण का रहेगा, किसी पर सत्वगुण का। लेकिन हमारा धर्म है प्रचार करना, प्रचार करना चाहिए। क्या रिजल्ट होता है ये सब श्री कृष्ण के हाथ में है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम युद्ध करो, अगर मरोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, युद्ध में मरोगे, और यदि जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। दोनों हालत में युद्ध करना तुम्हारा काम है, फल की कामना छोड़ दो क्या होगा। यदि भगवान ने साफ कह दिया कि जेता सी रणे शपथ में, तुम शत्रुओं को जीतोगे युद्ध में, विराट रूप दिखाकर भगवान ने साफ कहा तुम जीतोगे, चिंता मत करो, लेकिन अगर मरते भी हो, महान लोग मरते भी हो तो स्वर्ग जाओगे। ध्यान रखना चाहिए स्वर्ग कौन जाता है, या आतंकवादी सारे हेल में जाए, नरक में जाएंगे। स्वर्ग में वो जाता है जो युद्ध भूमि में सैनिकों के द्वारा मारा जाता है, लेकिन निरीह जनता को कोई कहीं काम करने गया है, कोई सोया है, कोई यात्रा कर रहा है, कोई रेल में जा रहा है, और वहां बम विस्फोट करके मार देना और कहना कि मारने वाला स्वर्ग में जाएगा, चाहे मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा। नरक किसके लिए? तुम्हारे जैसे पापी के लिए ही नरक। ये कहते हैं हम जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे, अगर मर जाएंगे तो, ऐसा थोड़े शास्त्र कहीं कहता है। ये लोगों के अपने मन की उपज है, मरना हो और स्वर्ग जाना हो तो जा करके सीमा पर, भारत की सीमा पर सैनिक बन करके लड़ो और राइफल से मर जाओ तब स्वर्ग जाओ, स्वर्ग जाने का ये उपाय। लेकिन आतंकवादी है और उसको कोई मार दिया, वो मरने वाला स्वर्ग थोड़े जाएगा, वो तो नरक में जाएगा। मरने पर तो नरक में जाएगा ही, उसको कोई मारे तब भी वो मर करके नरक में जाएगा। लेकिन देश के लिए, जनता के रक्षा के लिए अगर कोई युद्ध में मारा जाता है तो निर्विवाद वो स्वर्ग जाता है। हतो वा प्राप्त सी स्वर्गम, जीतवा व भोक्षसे मही। इस तरह भगवान सिखा रहे हैं अर्जुन को। महारानी कुंती की शिक्षा से हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि वास्तव में यदि सबको सुखी करना है तो कृष्ण को लाना चाहिए सेंटर में। खेतों की जब उर्वर शक्ति बढ़ जाती है कृष्ण के दृष्टिपात से, तो विकसित है। केवल देखने से फसलें लहलहा जाती हैं, जो अनेक फर्टिलाइजर डालने से नहीं हो सकती। वो तो बताते हैं कि खाद डालने से भूमि की शक्ति कमजोर होती जा रही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में लाना चाहिए, अपनी इंद्रियों को लगाना, देश में, गांव में, टाउन में, सब जगह, तो अपने आप देश सुखी होगा, अपने आप सब लोग सुखी होंगे। तो आप जब चले जाएंगे तो आपका अदर्शन होगा, मतलब आप हमको नहीं देखेंगे तो हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। जब कोई भक्त मंदिर में जाकर बैठता है तो ऐसा नहीं है कि केवल वही कृष्ण को देखता है, भगवान श्री कृष्ण उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते, देखते भक्त हमारे मंदिर में आया, हमारे घर में आया, यह लाभ है। वो व्यक्ति निरोग रहेगा, फलेगा, फूलेगा, यह सत्य सिद्धांत कुंती महारानी बोल रही है।